So here's the problem with our society. Our society today, through the wonders of consumer culture and hey, look, my life is cooler than your social media, has bred a whole generation of people who believe that having these negative experiences, anxiety, fear, guilt, etc. is totally not okay. I mean, if you look at your Facebook feed, everybody there is having a fucking grand old time. Look, 8 people got married this week. Some 16-year-old on TV got a Ferrari for her birthday, and another kid just made $2 billion inventing an app that automatically delivers you more toilet paper when you run out. Meanwhile, you are stuck at home flossing your cat and you cannot help but think your life sucks even more than you thought. But the feedback loop from hell has become a borderline epidemic, making many of us overly stressed, overly neurotic, and overly self-loathing. Back in Grandpa's day, he would feel like shit and think to himself, gee whiz, I sure do feel like a cow turd today. But hey, I guess that's just life, back to shoveling hay. But now if you feel like shit for even 5 minutes, you're bombarded with 350 images of people totally happy. And having amazing fucking lives. And it's impossible to not feel like there's something wrong with you. It's this last part that gets us into trouble. We feel bad about feeling bad. We feel guilty for feeling guilty. We get angry about getting angry. We get anxious about feeling anxious. So what is wrong with me? That is why not giving a fuck is so key. This is why it's going to save the world. And it's going to save it by accepting the world is totally fucked up. And that's alright. Because it's always been that way. And always will be. By not giving a fuck that you feel bad, you short circuit the feedback loop from hell. You say to yourself, I feel like shit, but who gives a fuck? And then, as if sprinkled by magic fuck giving fairy dust, you stop hating yourself for feeling so bad. George Orwell said that to see what's in front of one's nose requires a constant struggle. Well, the solution to our stress and anxiety is right there in front of our noses, and we are too busy watching porn and advertisement for machines that don't work, wondering why we are not banging a hot blondie with a rocking six pack to notice. We joke online about first world problems, but we really have become victims of our own success. Stress related health issues, anxiety disorders, and the cases of depression have skyrocketed over the past 30 years, despite the fact that everyone has a flat screen TV and can have their groceries delivered. Our crisis is no longer material. It's existential, it's spiritual. We have so much fucking stuff and so many opportunities that we don't even know what to give a fuck about anymore. Because there's an infinite amount of things we can now see or know. There are also an infinite number of ways we can discover that we don't measure up, that we are not good enough, that things are not as great as they could be. And this rips us apart inside. Because here's the thing that's wrong with all of the how to be happy shit that's been shared 8 million times on Facebook in the past few years. Here's what nobody realizes about all of this crap. The desire for more positive experience is itself a negative experience. And paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. So always accept who you are. Always embrace whatever thoughts you have inside of your mind. And don't give a fuck. Never.
वेलकम बैक दोस्तों. बहुत दिनों से मेरी कोई भी ऑडियो और वीडियो रिलीज़ नहीं हुई, और इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा एपिसोड ऐसे ही रिकॉर्ड किया है अपने फ़ोन से. आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा. इस ऑडियो में मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ. स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म. बहुत सारे हमारे आसपास के लोग, या बोलूँ तो हमारी सोसाइटी में, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म लोग धर्म से जोड़ते हैं, और इसे धर्म से जोड़ा भी जाना चाहिए. लेकिन ये मुद्दे की बात नहीं है. पहले हम समझते हैं कि आखिर स्पिरिचुअलिटी है क्या, और हमारे जीवन में इसका क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है. जैसे हम करते हैं हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं की, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस होना चाहिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी यानी कि हमारी आध्यात्मिकता के प्रति हमारी समझ भी अच्छी होनी चाहिए. और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, अपने आप को, अपनी रियलिटी को समझते हैं, तो आप जीवन में वो अनमोल ऊंचाइयों को छू पाएंगे जो मुझे लगता है कि इसे बिना जाने छूना असंभव है। जब मैं बात स्पिरिचुअलिटी की कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी शब्द जो है वो स्पिरिचुअल से बना है। स्पिरिचुअल जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, स्पिरिट और रिचुअल। रिचुअल बोलें तो संस्कार, कर्म, कोई काम को जो कि आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में करते हैं, और स्पिरिट मतलब आत्मा, तो यानी कि कोई ऐसा काम, ऐसा संस्कार जिसमें आपकी आत्मा का भी योगदान हो, उसे हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं या स्पिरिचुअल बोलते हैं या आध्यात्मिकता बोलते हैं। तो आखिर है क्या रिचुअल? चलिए रिचुअल को पहले समझते हैं। हम ह्यूमंस, हम इंसान दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को जिस तरीके से किया जाता है वह एक रिचुअल है, एक संस्कार है। यानी कि मैं अगर आपसे यह चीज़ बोल रहा हूँ और अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो भी ये भी एक रिचुअल है। यानी जिस तरीके से बोलना और जिस तरीके से सुनना, ये जो क्रियाएं हैं, ये भी एक रिचुअल है। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देता है बिना कुछ बोले तो वो भी एक रिचुअल है। लेकिन जब उस रिचुअल में आपकी स्पिरिट का भी योगदान हो जाए, आपके इमोशंस का भी, आपके आत्मा का भी योगदान हो जाए, तो वो चीज़ आध्यात्मिकता से भी जुड़ जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे मीरा और कृष्ण के, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी सुधामा कृष्ण की, वो भी एक प्रेम का रिचुअल है लेकिन जिसमें आत्मा का योगदान हो। जब आप आत्मा का पूरी आत्मा को लगा करके किसी कार्य को करते हैं तो वह आध्यात्मिकता कहलाती है। तो आखिर हम और ज़्यादा आध्यात्मिक कैसे बने? आध्यात्मिकता ऐसे पाई नहीं जा सकती, ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है, या फिर ये किसी चीज़ को करने के बाद या कोई पेपर पास करने के बाद आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपकी प्रोसेस में होना चाहिए, आपके दिनचर्या में होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप यूं ही पा सकते हैं ध्यान लगा करके। आखिर ध्यान लगाना आपको स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ता है ये समझते हैं। ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक ऐसे संस्कार है, एक ऐसा रिचुअल है जो कि आपको वर्तमान में रखने को, आपको खुद में, खुद को समझने को, अपने विचारों को समझने को, अपने आप को समझने को, अपनी आत्मा को समझने का समय देता है। ध्यान लगाना बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन ये और भी अच्छी हो सकती है जब आप इसको तब प्रैक्टिस कर रहे हों जब आप इस क्रिया को ना कर रहे हों। यानी कि तब प्रैक्टिस करना जब आप प्रैक्टिस ना कर रहे हों। आसान भाषा में बोलूं तो जैसे अगर आप इस समय पे अगर आध्यात्मिकता, जैसे कि आप अभी मेडिटेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप कैसे सुन रहे हैं, कैसे आपका दिमाग समझ रहा है, आप कैसे बैठे हुए हैं, आपका हाथ कहाँ रखा हुआ है, क्या किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है या बस हवा में ही झूल रहा है, या आप कैसे बैठे हुए हैं, आप कैसे सांस ले रहे हैं, आप खुद को नहीं पता कि आपकी सांसें कैसे आपको जीवित रखी हुई हैं, इस चीज़ का अनुभव भी आप नहीं करते। इस चीज़ को हमेशा अनुभव करना, आपका हाथ किसी चीज़ को कैसे छू रहा है, आप पानी कैसे पी रहे हैं, जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी कैसे आपके अंदर जा रहा है, ये सारी चीज़ों को जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को आप जब महसूस करते हैं तो आप एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही जीवन का, एक अलग ही पर्सपेक्टिव को टच करते हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जब भी आप इन सारी चीज़ों को छूते हैं, आप इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, आपके जीवन में खुशी जो है, आपके जीवन में जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस एपिसोड में मैं आपको कुछ अलग से चीज़ें नहीं बता रहा, बस एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए और मैं वो बता रहा हूँ। इसी तरह जैसे मैंने कुछ संदेश आप तक पहुँचाया, और अगर आपको इस चीज़ को अच्छा लगा हो तो आप इस चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा अभी इस पल को महसूस कीजिए, इस वर्तमान को, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इंग्लिश में गिफ्ट भी होता है, तो जो वर्तमान है ये आपके लिए बहुत बड़े उपहार के समान है। इसे महसूस करिए, हर एक पल, हर एक सेकेंड निकलते जा रहा है, हर एक समय आप फ्यूचर में जाते जा रहे हैं, और आपका फ्यूचर प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। अनुभव कीजिए, बहुत प्यारी चीज़ है। मुझे लगता है जीवन में आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में अपने आप को रख पाएंगे, उतना ज़्यादा आप जीवन को जी पाएंगे, उतना ज़्यादा आप जीवन को समझ पाएंगे। यह मैं अपने खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबको मैं प्रेरित करना चाहूँगा, मैं आप सबको बताना चाहूँगा और रिकमेंड करता हूँ कि मैं आपको हमेशा अपने आप को वर्तमान में रखना चाहिए, सबको थैंकफुल कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के साथ रहना चाहिए। आपको सब कुछ आपके पास जो है वो हो सकता है कि किसी और के पास ना हो। आपको हमेशा अपनी चीज़ों के लिए धन्यवाद होना चाहिए, आपको हमेशा उनके लिए धन्य महसूस करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करिए अगर यह शेयर करने के लायक है तो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।
एक रोज एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर, हताश होकर अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए वह एक पुल के किनारे पहुंचा। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां पे आया और उसको थोड़ा घबराया हुआ सा देखकर उससे पूछा, क्यों भाई, कोई समस्या तो नहीं है? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जो मरने वाला था वह रोने लगा और उसने बोला, भाई मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरी बीबी मेरे को छोड़कर चली गई है, एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, मेरे पास मेरा घर भी नहीं है, ना मेरा परिवार है, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं, इसलिए मैं यह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूं। इस बात को सुनने के बाद वह दूसरा व्यक्ति उस मरने वाले व्यक्ति से बोलता है, चलो ठीक है भाई, तुम मर जाना, लेकिन मरने से पहले तुम मेरे से 2 लाख रुपए ले लो और अपनी आंख मुझे दे दो। तो वह बोला, नहीं भाई नहीं, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता, मैं अगर आंख दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे। फिर उसके बाद बोला, चलो ठीक है 4 लाख ले लो, तब तो आंख दे दोगे। तो फिर वो घबरा के बोला, नहीं भाई नहीं दूंगा मैं, ये मेरी आंख है और मैं अपनी आंख क्यों दूं तुम्हें। फिर उसके बाद दोबारा उसने बोला कि चलो ठीक है भाई 10 लाख ले लो, एक हाथ ही दे दो अपना, चलो। तो वह मना करते हुए बोला, क्यों यार कैसी बात कर रहे हो, मैं अपने हाथ कैसे दे सकता हूं, तुम्हें पता है ना कि ये इतना आसान नहीं होता। तो फिर उस बात को सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने कहा, यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं कि इतना आसान नहीं होता है तुम्हें जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी लेना, तुमने परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की योजना बना ली और अब तुम मरने चले आए बिना ये सोचे कि तुम अपनी जिंदगी में कितने कीमती हो। जो तुम्हारा पैसा गया, जो लोग तुमसे बिछड़े, जो चीजें तुमसे दूर हुई, वह सब बाहर की चीजें थी, लेकिन जो तुम्हारे पास है अभी वह तुम खुद हो और तुम ही सबसे कीमती चीज हो इस दुनिया में, क्योंकि तुम्हारे बिना इस दुनिया में बाकी सारी चीजें कोई मतलब की नहीं है। जब तुम होगे तभी वो रिश्ते बनेंगे, जब तुम होगे तभी वो पैसे की कीमत होगी, जब तुम होगे तभी वो घर होगा, हर एक चीज तुमसे शुरू होती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जिंदगी को यूं खत्म करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। यह छोटी सी कहानी है पर इसके अंदर बहुत सारे सार हैं। बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं, किसी चीज से परेशान हो करके, कभी उनका बैंक में दिवालिया घोषित हो जाते हैं, कभी उनके परिवार में कोई दूर हो जाता है, कोई बिछड़ जाता है, या किसी दूसरी किसी भी समस्या के कारण वह अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि वह कुछ दूसरा काम कर सके। कभी कभी हम भी ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जब हमारे पास जिंदगी निराशावादी होती है, हमारे पास वह काला दिन होता है जिस दिन हम कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, लगता है जिंदगी में अब कुछ करने के लिए ही नहीं है। पर जरा सोचिए, क्या हम कभी ऐसी बातें तब सोचते हैं जब हमारे सामने कोई बड़ा सा लक्ष्य हो, जब हमारे सामने कोई बड़ा सा गोल हो जिसे हम पाना चाहते हैं? हाँ ठीक है ना, चलो आज समस्या आई है, कल तो वो सॉल्व होगी। अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे, हम कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे, तो वह हम कैसे अपनी जिंदगी में कुछ चीज का बदलाव ला पाएंगे? बदलाव लाने के लिए हमें कुछ अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हाँ, जैसे ये डिसीजन आपने लिया था अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए, हार मान के बैठने के लिए, इस जॉब को छोड़ने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए, जैसे आप फैसले लेते हैं वैसे आप दूसरे तरीके के भी फैसले ले सकते हैं, यह आपके हाथ में है। आप चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस खत्म होने के बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन गलतियों को सीख करके जो आपने पहले की थी, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं तो दोबारा भी उस एग्जाम में पास हो सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों को लेकर के सीखिए, सुधारिए और फिर नई शुरुआत कीजिए। यह आपके हाथ में है और आपके डिसीजंस और आपके चॉइसेस ही हैं जो आपको हर लेवल पे एक मौका देते हैं आपको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। और आप जहां पे भी हैं, आज जहां पे हैं और कल जहां पे होंगे, वह अपने फैसलों की वजह से होंगे। इसलिए सोच समझ कर फैसले लिया करिए। इस तरह जिंदगी में हार मानने से कुछ नहीं होगा। जब भी हार मानिए तो जरूर वहां पास आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, आपने गलतियां की होंगी या कुछ समस्याओं से कुछ आपने सीखा होगा कि वह समस्या कैसी होती है और हम उसे कैसे निकल सकते हैं। एक नया प्लान बनाइए और उस प्लान से निकलने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो या ऑडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो यह किसी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस मोटिवेशन की जरूरत है। और ज्यादा अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल वाली आइकन भी दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।
वेलकम बैक दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी कोई भी ऑडियो और वीडियो रिलीज़ नहीं हुई और इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा एपिसोड ऐसे ही रिकॉर्ड किया है अपने फ़ोन से। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। इस ऑडियो में मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म। बहुत सारे हमारे आसपास के लोग या बोलूँ तो हमारी सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म लोग धर्म से जोड़ते हैं और इसे धर्म से जोड़ा भी जाना चाहिए, लेकिन ये मुद्दे की बात नहीं है। पहले हम समझते हैं कि आखिर स्पिरिचुअलिटी है क्या और हमारे जीवन में इसका क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम करते हैं हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं की, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस होना चाहिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी यानी कि हमारी आध्यात्मिकता के प्रति हमारी समझ भी अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, अपने आप को, अपनी रियलिटी को समझते हैं, तो आप जीवन में वो अनमोल ऊंचाइयों को छू पाएंगे जो मुझे लगता है कि इसे बिना जाने छूना असंभव है। जब मैं बात स्पिरिचुअलिटी की कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी शब्द जो है वो स्पिरिचुअल से बना है। स्पिरिचुअल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पिरिट और रिचुअल। रिचुअल बोलें तो संस्कार, कर्म, कोई काम को जो कि आप अपने जीवन में दैनिक जीवन में करते हैं, और स्पिरिट मतलब आत्मा, तो यानी कि कोई ऐसा काम, ऐसा संस्कार जिसमें आपकी आत्मा का भी योगदान हो उसे हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं या स्पिरिचुअल बोलते हैं या आध्यात्मिकता बोलते हैं। तो आखिर है क्या रिचुअल? चलिए रिचुअल को पहले समझते हैं। हम इंसान दिन भर में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को जिस तरीके से किया जाता है वह एक रिचुअल है, एक संस्कार है। यानी कि मैं अगर आपसे यह चीज़ बोल रहा हूँ और अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो भी ये भी एक रिचुअल है। यानी जिस तरीके से बोलना और जिस तरीके से सुनना, ये जो क्रियाएँ हैं ये भी एक रिचुअल है। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देता है बिना कुछ बोले तो वो भी एक रिचुअल है। लेकिन जब उस रिचुअल में आपकी स्पिरिट का भी योगदान हो जाए, आपके इमोशंस का भी, आपके आत्मा का भी योगदान हो जाए, तो वो चीज़ आध्यात्मिकता से भी जुड़ जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे मीरा और कृष्ण की, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी सुधामा कृष्ण की, वो भी एक प्रेम का रिचुअल है लेकिन जिसमें आत्मा का योगदान हो। जब आप आत्मा का पूरी आत्मा को लगा करके किसी कार्य को करते हैं तो वह आध्यात्मिकता कहलाती है। तो आखिर हम और ज़्यादा आध्यात्मिक कैसे बने? आध्यात्मिकता ऐसे पाई नहीं जा सकती, ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है या फिर ये किसी चीज़ को करने के बाद या कोई पेपर पास करने के बाद आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपकी प्रोसेस में होना चाहिए, आपके दिनचर्या में होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप यूं ही पा सकते हैं ध्यान लगा करके। आखिर ध्यान लगाना आपको स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ता है ये समझते हैं। ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक ऐसी संस्कार है, एक ऐसा रिचुअल है जो कि आपको वर्तमान में रखने को, आपको खुद में खुद को समझने को, अपने विचारों को समझने को, अपने आप को समझने को, अपनी आत्मा को समझने का समय देता है। ध्यान लगाना बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन ये और भी अच्छी हो सकती है जब आप इसको तब प्रैक्टिस कर रहे हों जब आप इस क्रिया को ना कर रहे हों, यानी कि तब प्रैक्टिस करना जब आप प्रैक्टिस ना कर रहे हों। आसान भाषा में बोलूं तो जैसे अगर आप इस समय पे अगर आध्यात्मिकता, जैसे कि आप अभी मेडिटेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप कैसे सुन रहे हैं, कैसे आपका दिमाग समझ रहा है, आप कैसे बैठे हुए हैं, आपका हाथ कहाँ रखा हुआ है, क्या किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है या बस हवा में ही झूल रहा है, या आप कैसे बैठे हुए हैं, आप कैसे सांस ले रहे हैं, आप खुद को नहीं पता कि आपकी सांसें कैसे आपको जीवित रखी हुई हैं, इस चीज़ का अनुभव भी आप नहीं करते। इस चीज़ को हमेशा अनुभव करना, आपका हाथ किसी चीज़ को कैसे छू रहा है, आप पानी कैसे पी रहे हैं, जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी कैसे आपके अंदर जा रहा है, ये सारी चीज़ों को जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को आप जब महसूस करते हैं तो आप एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही जीवन का, एक अलग ही पर्सपेक्टिव को टच करते हैं। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जब भी आप इन सारी चीज़ों को छूते हैं, आप इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, आपके जीवन में खुशी जो है, आपके जीवन में जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस एपिसोड में मैं आपको कुछ अलग से चीज़ें नहीं बता रहा, बस एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए और मैं वो बता रहा हूँ। इसी तरह जैसे मैंने कुछ संदेश आप तक पहुँचाया, और अगर आपको इस चीज़ को अच्छा लगा हो तो आप इस चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा अभी इस पल को महसूस कीजिए, इस वर्तमान को, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इंग्लिश में गिफ्ट भी होता है, तो जो वर्तमान है ये आपके लिए बहुत बड़े उपहार के समान है। इसे महसूस करिए, हर एक पल, हर एक सेकेंड निकलते जा रहा है, हर एक समय आप फ्यूचर में जाते जा रहे हैं और आपका फ्यूचर प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। अनुभव कीजिए, बहुत प्यारी चीज़ है। मुझे लगता है जीवन में आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में अपने आप को रख पाएंगे उतना ज़्यादा आप जीवन को जी पाएंगे, उतना ज़्यादा आप जीवन को समझ पाएंगे। यह मैं अपने खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबको मैं प्रेरित करना चाहूँगा, मैं आप सबको बताना चाहूँगा और रिकमेंड करता हूँ कि मैं आपको हमेशा अपने आप को वर्तमान में रखना चाहिए, सबको थैंकफुल कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के साथ रहना चाहिए। आपको सब कुछ, आपके पास जो है वो हो सकता है कि किसी और के पास ना हो, आपको हमेशा अपनी चीज़ों के लिए धन्यवाद होना चाहिए, आपको हमेशा उनके लिए धन्य महसूस करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करिए अगर यह शेयर करने के लायक है तो। Thanks for listening and keep improving.